रिएक्शन है। आज क्या हो गया, बहुत बार हम योग में जब अटैच हो जाते हैं तो परिवार को भूल जाते हैं। ये योगी के लक्षण नहीं है, राजयोगी के लक्षण है। खास करके राजयोगी वाला दोनों संभालने वाले, परिवार में जब जाते हैं तो योग को भूल जाते हैं, योग में आते हैं तो परिवार को भूल जाते हैं। मतलब सेकेंड में आप परिवार में आ सके, सेकेंड में योग में आ सके, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर किसी ने परिवार से उठा के बोला कि चलो 5 मिनट योग करना है, सारा काम छोड़ के, मतलब स्थिति तुरंत योगी जैसी बननी चाहिए। और किसी ने बोला कि चलो अभी घर का पूरा काम पूरा करना है, तुरंत योगी से उतर के परिवार में आना चाहिए। जो किसी से अटैच नहीं होता, किसी से मतलब लौकिक में बाहर किसी भी बात से, वो हर जगह हर तरीके से कार्य कर सकता है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप अपने आप से अटैच कितने हैं। दुनिया में सिर्फ दो से अटैच रहे, या तो अपने आप से या फिर बाहर से, बाकी किसी से अटैच नहीं रहेंगे दुनिया में। बाकी आप जिस किसी से भी अटैच रहेंगे उससे आपको दुख मिलेगा। मैं आत्मा वाला और मैं मेरा बाबा, मैं आत्मा वाला और मेरा बाबा, ये दो शब्द छोड़कर अगर आपने मैं और मेरा किसी और के लिए कहा तो उससे आपको 100% दुख मिलेगा। आपको अगर शरीर का दुख चल रहा है, कोई भी बीमारी है आपके शरीर में, और एक प्रयोग करके देखिए, कभी भी अपने शरीर को मेरा शरीर नहीं कहना, कभी भी नहीं कहना, कहना है कि बाबा का रथ है, बाबा ने सेवा के लिए दिया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, बल आपके पास है, लेकिन आपके शरीर को मेरा शरीर कभी नहीं कहना। आपका शरीर आपको पूरा सहयोग देगा, आपके मन को कभी मेरा मन नहीं कहना, फिर वो मेरा मतलब वो आपको पूरा सहयोग देगा, मेरे पर का दुख नहीं देगा। आपके संस्कार को कभी मेरे संस्कार नहीं कहना, कैसे भी संस्कार है आपके, चलो अभी तक क्लीन नहीं हुए कोई बात नहीं, निकलेंगे आगे चलते, लेकिन गलती से भी मेरे संस्कार नहीं कहना। जिस किसी को भी आप मेरा कहेंगे बाबा छोड़ के, उससे आपको दुख देगा। तो सब कुछ बाबा का, अगर सब कुछ बाबा का है तो इससे जो कुछ हो रहा है वो भी बाबा करवा रहा है, तो हमें चिंता किस बात की। अपने मुरली ने सुना है, क्लास में भी सुना है, बाबा ने भी कहा है कि जब से तुम ब्राह्मण बने हो तब से तुम्हारे हर संकल्प बोध और कर्म का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाते हो? बहुत बार हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, यहां ही फंस जाते हैं। कलयुग में, ये कलयुग अंत है, संगम युग में आप तब तक नहीं हो जब तक आप आत्मिक स्थिति में हो। जो आत्मा आत्मिक स्थिति में है वो संगम युग में चल रही है, और जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है वो कलयुग में चल रही है। तो आप नोटिस कीजिए आप कहां है। तो संगम युग में आप जब तक नहीं हो तब तक आप किसी भी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाइए, सब बाबा को दे दीजिए, सारी देवी शिवा बाबा चला रहे। एक बार आपने संकल्प कर लिया कि मेरी सारी जीवन बाबा चला रहा है, फिर आपसे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आज हर किसी को चिंता किस बात की है, मुझे बड़ा पद मिला तो अच्छा है सत्यगुरु में, नहीं मिला तो अगर ऊपर बहुत महाकाल के साथ धर्मराज के साथ डंडे खाने पड़े तो, इन दो चिंताओं के कारण आप सत्संगम को जी नहीं पा रहे, एक पद के चक्कर में और एक मार खाने के चक्कर में। छोड़ दो कुछ समय के लिए दोनों बातों को, जियो सर, पद मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ऐसे नहीं। अगर यहाँ आपका पद आपके पास है, आपका पद आत्मिक स्थिति का आपके पास है, तो वहां सत्युग का पद आपको 100% मिलेगा। यहाँ जितने समय आप आपके सिंहासन पर बैठे हो उतने समय वहां बैठेंगे। इसलिए लास्ट क्लास में भी ये बात आपने सुनी होगी, अभी आपको पद की क्लैरिटी बताते कैसे। जो आत्मा 100% आत्मिक स्थिति में है, 100% आत्मिक स्थिति में है, वो सत्युग की आदि में आए। अभी आपके डिसाइड करना, हम कुछ नहीं बोले। जो आत्मा 100% आत्मिक स्थिति में है वो सत्युग की आदि में आएगी, जो 75% है वो एथलीट के मध्य में आए, जो 50% आत्मिक स्थिति में है वो त्रेता में आए, जो 25% आत्मिक स्थिति में है वो त्रेता के मध्य में आए। अभी आप ही डिसाइड करना आपको कहाँ आना है। अगर आपकी आत्मिक स्थिति है 100%, जितने परसेंट उतना परसेंट आपका सत्य, आप ही डिसाइड करना। अगर सत्य के आदि में आना है तो आत्मिक स्थिति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर समझकर जितने कर्म होते हैं उसमें से 99% कर्म पाप कर्म होने की संभावना होती है। शरीर समझकर अगर अपने अच्छा कर्म भी किया, किसी के लिए अच्छे बोल भी बोले या किसी के लिए अच्छे संकल्प भी चलाए, शरीर समझकर अच्छा कर्म किया तो पाप होने की संभावना है। किसी के लिए शरीर समझकर अच्छे बोल भी बोले उसके लिए श्राप होने की संभावना है, और किसी के लिए शरीर समझकर अच्छे संकल्प भी चलाए उसके लिए वो नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलने की संभावना है, और आत्मा समझकर किसी के लिए नेगेटिव संकल्प भी चलाए तो भी उसको पॉजिटिविटी मिलेगी, और आत्मा समझकर किसी के लिए श्राप भी दिया फिर भी वो उसके लिए वरदान होगा, और अच्छा आत्मा समझकर कोई पाप कर्म किया फिर भी आपका पुण्य का कर्म होगा, आत्मा समझकर। बहुत बड़ा डिफरेंस है। शरीर समझकर आप गलत भी करोगे तो भी सही होगा, और शरीर समझकर आप सही भी करोगे तो भी गलत होगा, और आत्मा समझकर गलत भी करोगे तो भी सही होगा। इसलिए आप डिसाइड कीजिए सारे दिन में आप अपने आप को क्या समझकर क्या करते हैं। आत्मा समझकर परिवार की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं आत्मा समझकर, तो परिवार संतुष्ट हो जाए, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा आत्मा समझ। और शरीर समझकर आप कितनी भी सेवा कीजिए आपको कोई नहीं पूछेगा घर में, आपको तो अनुभव है कितनी सेवा कर रहे आप सब परिवार की, कोई नहीं पूछे, मतलब कोई पूछे इसलिए हम नहीं कर रहे, मतलब आपको कोई अच्छे बोल भी नहीं बोलेगा शरीर समझकर, सुख भरे संकल्प भी नहीं करेगा, सुख भरे आपके प्रति कोई कर्म भी नहीं करेगा, इसलिए हर कर्म आत्मा पर। लास्ट क्लास में ये भी बात आपने सुनी होगी, जितने निवाल है भोजन के, जितने निवाल है आप आत्मा समझकर सेवन करते हैं खाते हैं, उतने ही निवालों से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बहुत बड़ी बात है, आपके भोजन के जितने निवाले आप आत्मा समझकर खाते हैं उतने ही निवालों से आपको आत्मिक स्थिति की या आध्यात्मिकता के उन्नति की ताकत मिलती है, और जितने शरीर समझकर खाते हैं उससे आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं शरीर समझकर खाने से। इसलिए अगर आपको भोजन के ऊपर भी अटेंशन है 10 से 15 मिनट जाते हैं भोजन करने के, अगर एक एक निवाल आप आत्मा समझ के उठाकर खाते हैं देखिए शरीर में क्या बदलाव होते हैं, पूरा खून बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे, आपके विचार आपके बोल और कर्म बदल जाएंगे। छोटा सा पुरुषार्थ है, 15 मिनट सुबह का नाश्ता, 15 मिनट दोपहर का लंच, 15 मिनट चलो शाम की चाय नाश्ता, रात के 15 मिनट, 1 घंटे का पुरुषार्थ और पूरे जीवन बदल जाए। आत्मिक स्थिति की मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप आत्मिक स्थिति आती जाए, बस जो भी खाएंगे आप इतना ही याद रखें कि इस बिंदी को आप, मतलब ये बिंदी इस मुख द्वारा अंदर ले, फिर देखिए क्या बदलाव होते हैं आपके अंदर, आपके ऑरा में क्या बदलाव होते हैं, आपके आभा मंडल जो ऑरा ही कहते हैं, आपके आसपास के वायुमंडल में क्या बदलाव होते हैं नोटिस करके देखिए क्या क्या होगा। आत्मा समझ के आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको सफलता मिलनी ही नहीं है हर बात में। जितनी सांसें और लेने पर, जितनी सांसें, सांस जो चलती है ना शरीर में, सांसों से ही शरीर चलती है, सांसों को हम प्राण कहते हैं, जितनी सांसें आप आत्मा ले रहे हैं आत्मा समझ के, उतनी सांसों से आपके शरीर में मेंटेनेंस हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है, बाकी जितनी सांस से आप शरीर समझ के ले रहे हैं उतनी सारी सांसें आपके शरीर को खराब कर रही है। अब ये आप चॉइस आपकी है, सांस में आत्मा वाली जो शब्द आप आत्मा समझ के सुन रहे हैं, जो शब्द आप आत्मा समझ के सुन रहे हैं उस शब्द में वो भावनाएं नहीं है। किसी ने गाली दी, अगर शरीर समझ के उस गाली को आपने सुना तो दुख देगी, पर आत्मा समझ के सुना तो गाली भी आपको सुख देगी, फूल लगेगी आपको। ट्राई करके देखिए, हर बात आत्मा समझ, अगर ये पाठ पक्का हो गया तो जीवन में हर बात आपको मिलेगी, मेहनत खत्म हो जाएगी, मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, मेहनत पूरी खत्म, कुछ भी नहीं। तो आज से कम एक बात कीजिए, एक घंटे, एक घंटा हमने नोटिस किया खाने पीने के लिए, सारा दिन का नाश्ते दो टाइम के, दो टाइम का खाना, तो एक घंटा हम कम से कम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। हर निवारा मैं आत्मा खाऊंगी, आत्मा समझ के हर निवारा, फिर देखिए आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, नोटिस करके देखिए क्या क्या होता है। जहां कहां भी अगर आप बैठेंगे, किसी से किसी बात को आपको सुनना है, आत्मिक स्थिति में बैठ जाइए। बहुत से आत्माओं की कंप्लेंट होती है कि किसी के साथ जब हम बैठते हैं बात करने तो इतनी सारी बातें करते हैं वो सामने वाली आत्मा, उसको बोल भी नहीं सकते कि चुप हो जाओ बस करो ये अभी, क्योंकि क्या लगता है कि वो अपने परिवार के को कैसे बोले। अब अगर आत्मा समझ के उनके पास बैठते हैं और उनको आत्मा देखते हैं वो उतनी ही बातें करेंगे जितनी आपको आवश्यक, उससे ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वो शांति अपने आप ही महसूस हो जाएगी, उनको पता चलेगा कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगेंगी, इसलिए उनके मुख से ऐसी बातें निकलेंगी जो आपको सुकून देने वाली। बहुत ताकत है आत्मिक स्थिति, इसलिए हर क्रम राजयोग का पहला पाठ 80 साल से बाबा एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं, इसलिए कभी कभी मुरली में बाबा भी बोलता है कि अभी आठवीं कक्षा में पास नहीं की है, 80 साल में हमने आठवीं की कक्षा में पास नहीं की है, मुरली में बोलते बाबा। मैंने कहना क्या है, जितना हो सके हर बार आत्मा समझ फिर देखे क्या क्या बदलाव होते हैं हर बार। अभी हम कौन सी बातें करना है नोटिस करें, जैसे आप मॉर्निंग में उठे बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, चेक कीजिए कि वो बिंदी, आप बिंदी से आवाज निकल रही है कि बाबा गुड मॉर्निंग, ब्रह्मा बाबा गुड मॉर्निंग, मम्मा गुड मॉर्निंग, जिस किसी को भी गुड मॉर्निंग करना वो बिंदी से आवाज निकल रही मन ही मन में कि बाबा गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि उस बिंदी से निकाल। चलो इस बात में एक और बात याद आ गई, हमने अभी तक सुना है कि उठते ही हमारा जो पहला संकल्प होता है वही हमारा सारा दिन होता है। पहला संकल्प तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए एक मार्जिन भी है 10 मिनट की, कि 10 मिनट तक हम जो संकल्प चलाते हैं वो हमारा दिन होता है, ये हो गया संकल्प। लेकिन उठते ही आपके मुख से जो पहला शब्द होता है उसी प्रकार के शब्द आपके मुख से निकलते जाएंगे। अब अनुभव करके देखिए, अगर आपके मुख से उठते ही पहला शब्द बाबा है तो उसे नोटिस करके देखिए आपके मुख से कौन कौन से शब्द निकले, कैसे कैसे शब्द निकले, नोटिस करके देखिए हर बार। अगर उठते ही आपकी पहली दृष्टि बाबा के ऊपर है तो चेक कीजिए सारे दिन भर में आपकी आंखों ने क्या क्या देखा, पहला संकल्प, पहला शब्द, पहली दृष्टि। उठते ही आपने पहला शब्द कौन सा सुना, अगर बाबा बोला तो बाबा ही सुनेंगे इतना 100%। तो नोटिस कीजिए सारे दिन भर में आपके कानों में कौन कौन से शब्द गूंजे, चेक करके देखिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मेंद्रियों को बाबा में बना रहे, राजयोग की विधि में डाल रहे। और एक बार उठते ही जो अपने पहली सांस उठाई, चलो पहली सांस को याद नहीं रहती, लेकिन उठते ही अगर पहली सांस आपकी कौन से संकल्प में उठी, नोटिस करके देखिए। पहली सांसों में ही अगर बाबा है तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो नाचे भी चल रही हूँ, जब भी आपका ध्यान सांसों के ऊपर जाएगा बाबा की याद आ जाएगी, अपने आप उठते ही आपका पहला स्पर्श कहाँ हो चेक करके देखिए, अगर पॉसिबल है ना ये विधि करके देखिए। अब जहाँ सोते जिनको पॉसिबल है, हर एक घर में ही करना पॉसिबल है कि बाबा की फोटो साथ रखे सोते वक्त, पॉसिबल नहीं। मुरली साथ रखे पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी किसी को बंधन भी अभी तक है। तो बस बाबा का फोटो छोटा सा भी हो कोई बात नहीं रख दीजिए, और उठते ही पहला टच बाबा को कीजिए
सर,
करके देखिए।
मोबाइल सामने रखा ना, उसने मोबाइल में रखा,
बहुत अच्छा। अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे, मोबाइल से थोड़ा अलग करेंगे, छोटा सा फोटो भी रखेंगे ना। तो मोबाइल में क्या है कि थोड़े अलग प्रकार की एनर्जी है, वो डिवाइस है वाइब्रेशन, इसलिए हम अलग प्रयोग करेंगे कि एक छोटा सा फोटो रखेंगे और पहला टच भी हम बाबा को करेंगे। फिर देखिए क्या होगा, फिर क्या हो गया आपका पहला संकल्प बाबा, आपकी पहली दृष्टि बाबा, आपका पहला मुख बाबा, आपका पहला कान का शब्द बाबा, आपका पहला स्पर्श भी बाबा, आपका सारा दिन कैसे जाता है चेक कीजिए, अनुभव करके देखिए। छोटी छोटी बातें हैं, जिन बातों में पहले बाबा आता है वो बात कैसे होते देखिए। जब आप ब्रश करने जा रहे हो, जैसे ब्रश करने जा रहे हैं तो पहली आपकी, मैं आत्मा और बाबा चेक करके देखिए, फिर आपको याद करने की भी जरूरत है। जब नहा रहे पहला पानी का मग अब आपके अंदर डाल रहे, पहले मग में ही आप और बाबा, आत्मा और बाबा। जब आप कपड़े पहनेंगे हमेशा याद रखना, कपड़े पहनेंगे तो आप आत्मिक स्थिति में पहनेंगे, जब तक वो कपड़े आपके बदन बदन के ऊपर है इस तब तक आपको आत्मिक स्थिति बहुत इजीली रहे, ट्राई करके देखिए। इतना ही संकल्प करना है कि मैं आत्मा मेरे इस वस्त्र को वस्त्र पहना रही हूँ, मैं आत्मा मेरे इस वस्त्र को वस्त्र पहना रही हूँ। फिर वो जब तक वस्त्र आपके शरीर के ऊपर है तब तक आपको यही भान रहेगा कि मेरे वस्त्र के भी वस्त्र है, मतलब आप आत्मिक स्थिति। नाश्ता करेंगे पहला निवाला आप आत्मा समझ के उठाइए, हमें तो नाश्ते में हमने तो सारे निवाले कर दिए आत्मा और बाबा। शुरू शुरू में दोनों को याद करना पॉसिबल नहीं होगा साथ में आत्मा और बाबा, इसलिए कुछ दिनों के लिए बस जहाँ आपकी याद है वहाँ बाबा की याद तो अपने आप रहती है, उसको लानी नहीं पड़ती। इसलिए शुरू में पूरा फोकस आपके ऊपर रखिए, मैं आत्मा ये सब कुछ कर रही हूँ, फिर देखिए क्या होता है। घर से बाहर पहला कदम रखेंगे तो इतना ही याद रखना कि मैं आत्मा इस शरीर के साथ बाहर निकलिए, मतलब इस मेरे इस रहने के स्थान से लौकिक स्थान से किसी और स्थान पर सेवा के लिए जा रहे, लौकिक कर्म भी है लेकिन वो भी सेवा ही है। हर कर्म में पहले आप, फिर क्या हो जाता है देखिए सफलता, सफलता आपके पीछे होगी। जहाँ आत्मा पहले है वहाँ बाबा साथ है, और जहाँ बाबा साथ है वहाँ सफलता अपने आप है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ आप है वहाँ बाप है, और जहाँ बाप है वह सब कुछ अपने आप है, सब कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए हर कर्म में पहले आप, क्लास के लिए भी आएंगे मुरली क्लास के लिए, चेयर में बैठ यहाँ एंट्री करते हो इतना अटेंशन रखना गेट में एंट्री करने के बाद कि मैं आत्मा इस शरीर के साथ, भले एक दो सेकंड लगे आपको पैर रखने के लिए गेट के अंदर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आत्मा मेरे घर में प्रवेश कर रही हूँ, ये घर है ना सभी का सेंटर, तो मैं आत्मा मेरे घर में प्रवेश कर रही हूँ। फिर देखिए आप जब यहाँ आकर बैठेंगे तो यही याद रखना कि मैं आत्मा क्लास में बैठी हूँ स्टूडेंट बनकर मुरली के लिए। देखिए क्या होता है बदलाव, पहला संकल्प आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कर्म का पहला संकल्प और हर कर्म के एंड का जो कर्म समाप्त हो रहा है उसका लास्ट संकल्प। इसका पहला संकल्प तो सभी ने जान लिया अच्छे से, फिर लास्ट क्या चीज है आप देख लीजिए। बहुत बार हमने सुना है अंतमति सो गति, बराबर है अंतमति सो गति। अंतमति ऐसे नहीं कि जब शरीर छोड़ेंगे तभी अंतमति, नहीं, कोई भी आप कर्म कर रहे हो उस कर्म की अंतमति क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप बिस्तरे पर सोने जा रहे हो تو سونے کے وقت جب آپ لیتے ہو تو نیند آنے تک لاسٹ جو متی ہے بدھی ہے وہی جب آپ جگیں گے تو وہ یاد آ جائے گی، یاد آ جائے گی. اس میں بھی ہم یوگ ڈالیں گے، پہلے جانتے ہیں کیا کیا ہے. جیسے آپ جگ گئے بستر پر ہیں تو بستر ابھی چھوڑ رہے ہیں نا، مطلب وہ انت ہے بسترے کا اور ایک نیا پارٹ شروع ہو رہا ہے نہانے جانا. تو وہ انتپتی کیا ہے، مطلب بستر چھوڑتے سمے آپ کے من میں کیا وچار ہے، وہی وچار کیری فارورڈ ہو کے آپ کا آگے کا کرم چلا رہے ہیں. باتھ روم میں جانے تک نہانے تک وہی وچار چل رہے ہیں. نہانے کے بعد جب آپ باتھ روم چھوڑ رہے ہیں، باتھ روم سے باہر آ رہے ہیں، تو باتھ روم سے باہر آنے کے وقت آپ کی انتپتی کیا ہے، وہی وچار آپ کا آگے کا کرم چلا رہے ہیں. ناشتہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، ناشتہ اینڈ ہو رہا ہے، ناشتہ سماپت ہو رہا ہے، لاسٹ نوارا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں، اس سمے آپ کی انتمتی کیا ہے، وہ انتمتی آپ کا آگے کا کرم چلا رہا ہے. ہر کرم کی جو انتمتی ہے وہی انتمتی آپ کا اگلا کرم چلا رہا ہے. اس لیے انتمتی اور آدھی اگر ٹھیک ہے تو ہر کرم اپنے آپ ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، جب آپ سونے جاتے ہیں رات کو کیا کرنا ہے، چھوٹا سا آپ کو کام کرنا ہے. یا ابھی کچھ دنوں کے بعد اب سب کے لیے اچھے ویڈیوز آ رہے ہیں، اچھی چھوٹی سی کامنٹریز ہیں جس میں آتمک استھتی کیسے بڑھائی جائے. جیسے ابھی ہم نے کہا نا، آنکھوں سے آتمک استھتی کیسے بڑھائے، سانسوں سے کیسے بڑھائے، مکھ سے کیسے بڑھائے، کانوں سے کیسے بڑھائے، اسپرش سے کیسے بڑھائے، اس کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آ رہے ہیں کچھ دنوں میں آ جائیں. تو ہم دیکھ رہے تھے نیند کا سونے کا. جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو بستر پر جب آپ لیٹ گئے، ابھی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ابھی آپ کو سونا ہی ہے، سب ہو گیا، پوتا میں ہو گیا، سب ہو گیا، بس آپ کو سونا ہے. تو آنکھیں بند کرتے سمے آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس سمے بس کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو بندی دیکھی اندر، برین کے اندر ایک پوائنٹ آف لائٹ دیکھی. جیسے دھیرے دھیرے آپ آنکھیں بند کرتے جا رہے ہیں ویسے وہ پوائنٹ آف لائٹ کی لائٹ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے، آنکھیں جب کھلی ہے تو چھوٹا پوائنٹ آف لائٹ دیکھیں گے، جیسے آنکھیں بند کرتے جا رہے ہیں تو بند کرتے سمے جیسے بند کر رہے ہیں ویسے وہ لائٹ بڑھتی جا رہی ہے. وہ لائٹ کتنی بڑی ہو، آپ کے سر کی جو پھر آپ کو آنکھیں نہیں کھولیں گی نیند آنے تک، پھر دیکھیے مارننگ میں کیا ہوتا ہے. اب آپ کا انوبھو کلاس میں شیئر کیجیے دے دیجیے کہ مارننگ میں کیا ہوگا، ایسے اس پرکار نیند لینے کے بعد آپ کا انوبھو کیا ہے، مطلب آپ نے کس کو دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کو دیکھتے دیکھتے بابا کی یاد آٹومیٹک آتی چلے گی. دھیرے دھیرے آپ بابا کی یاد کو بڑھائیں گے، پہلے یہ پارٹ پکا ہو گیا پھر بابا بہت ایزی ہو جائے. اس لیے آپ کے ہر کرم میں آپ ہیں. جو کرم جو ابھی ہم تھوڑے سمے پہلے بات کر رہے تھے، جو کرم آپ نہیں کرتے ہو وہ کرم آپ سے کوئی اور کرتا ہے، کوئی اور کرتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ پانچ وکار کر کے چلے جاتے ہیں، مایا کرتی ہے، پرکرتی کرتی ہے، باڈی کرتی ہے، دیہ کرتی ہے، یا پھر اور آتمائیں کر کے چلے جاتی ہیں. دھیان نہیں ہوتا وہاں جہاں، جب تک جس سمے میں آپ کا دھیان آپ کے اوپر ہے تو آپ کا شریر آپ کے کنٹرول میں ہے. جیسے آپ کا دھیان آپ سے ہٹ گیا کنٹرول کسی اور نے لے لیا. بہت بار ہم کہتے ہیں کہ اتنی اچھی آتمائیں کو کیا ہو گیا، اچانک سے ایسے بیہیو کرنے لگی، ان کا کنٹرول کسی اور نے لے لیا. اس لیے چیک کیجیے سارے دن بھر میں آپ کا کنٹرول کوئی اور تو نہیں اٹھاتا، کوئی اور تو آپ کو نہیں چلاتا سارے دن بھر میں، کیا آپ بھی چلا رہے ہو؟ اس نے اچھے کرم کیے یا برے کرم کیے، کھاتا تو آپ کا ہی بنا. کسی اور نے آپ کو چلایا، اس نے اچھے کیے یا برے کیے؟ اچھے تو نہیں ہو سکتے، آپ کو پتا ہے، ہوں گے تو برے ہی ہوں گے، مطلب کھاتا تو آپ کے سر کے اوپر آ گیا. اس لیے سارے دن بھر میں آپ کا کنٹرول آپ کے پاس ہوں. اس لیے کلی میں بابا نے کہا تھا نا، ابھی ریسنٹلی یہ کلی آ رہی تھی، جب کوئی کروھ کرتا ہے تو وہ براہمن نہیں ہے، بولنے میں بھی اچھا نہیں لگتا وہ کون ہے، آپ نے سنا ہے اچھے سے، مطلب آپ اس سے کہہ سکتے ہو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ جو نہیں ہو نا اس سے نہیں بات کرنی ہے، مجھے براہمن سے بات کرنی ہے. جب کوئی کروھ کی اوستھا میں ہوتا ہے تب وہ نہیں ہوتا، उसको क्रोध ने वशीभूत कर लिया, वो क्रोध के कंट्रोल में है, वो ब्राह्मण नहीं है, उस समय आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी क्रोध नहीं करती, इसलिए उनसे कभी बात नहीं कीजिए, क्योंकि वो आम आपके ऊपर क्रोध निकाल देंगे। उनको कहना अब जब शांत हो जाओगे तब हम बात करेंगे, क्योंकि आप मैं जिनसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो आप नहीं हो, तो मेरा बात करने का कोई फायदा ही नहीं वहां पर। तो इस प्रकार आप अपने आप को चेक कीजिए सारे दिन में आपको कौन चला। जो आत्मा अपने आप को चलाती है उसे बाप चलाता है हर समय, या तो आप चलाते या बाप चलाते हैं, मैक्सिमम टाइम बाबा चलाते हैं आत्मा जो अपने आप को चलाते हैं आत्मिक स्थिति में। तो आप आपकी स्थिति में आ जाए सारे दुख दर्द अपने आप निकल जाएंगे। किसी के जीवन में वास्तविक कोई दुख दर्द नहीं है, दुख दर्द एक्सटर्नल है, आप इंटरनल हो, आप एक्सटर्नल को देख रहे हो बाहर को, इसलिए अविनाशी को भूल रहे हो, अपने आप को भूल रहे हो। तो इंटरनल को देखो, एक्सटर्नल को नहीं देखो, शरीर को नहीं देखो। आज भी बोलेंगे बाबा जी कहा वास्तविक ओम शांति बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, गीत भी लगाने की आवश्यकता नहीं, मतलब ज्ञान इससे भी परे कहीं तो भी है। बाबा कहते हैं कि ये बस कुछ तो चाहिए इसलिए ओम शांति बोलना पड़ता है, कुछ तो चाहिए इसलिए गीत लगाने पड़ते हैं, मतलब ज्ञान इस सभी से परे है, ओम शांति से परे है, गीतों से परे है, सभी सभी बातों से ज्ञान परे है। वो आकर यहाँ रुकता है और यहीं से शुरू होकर वहां तक पूरा हो जाता है बाबा, इसलिए अपने आप में आ जाए जितना हो सके। जब अपने आप में आ जाएंगे तो हर कर्म का आनंद आपको मिलेगा, फिर आपकी शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक सामाजिक अवस्था कुछ भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी अवस्था ऊंची होती जाएगी। वे बहुत से आत्माओं के फोन कॉल्स हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों के लिए हमें अनुभव करके देखा, प्रॉपरली हमने बस आत्मिक स्थिति के ऊपर फोकस किया तो सब कुछ ठीक होता गया। जिन बातों के लिए हम रो रहे थे कि अमृत वेला नहीं हो रही, रोज की मुरली में अगर जाते भी हैं तो नींद होती है, जाते भी हैं तो कभी कभी लेट पहुंचते हैं, जाते भी हैं तो पूरी मुरली मुरली जो है तो पूरी सुन नहीं पाते, कभी कभी आधी ही सुनती, मतलब आधी नींद में चली जाती है। उनका अनुभव है कि अपनी स्थिति बढ़ाने के कारण अपने आप सारी बातें ठीक होती जा रही है, कुछ भी करना नहीं पड़ता, अमृत वेला भी ठीक होती है। अमृत वेला ठीक क्यों नहीं हमारी, क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे अमृत वेला करनी है। अब करके देखो संकल्प है आपको कि मैं कल अमृत वेला करने वाली हूँ, एक घंटा कभी नहीं होगी, बाबा मुझसे कराने वाला है, फिर क्या होता है। अगर आप मैं बोल के आत्मिक स्थिति में करते हैं ना, मैं बोल के अगर आप आत्मिक स्थिति में करते हैं देखो देखिए होगी, लेकिन मैं बोल के अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास अच्छाई को धारण करने की, धारण करने से अच्छा हम कहेंगे अच्छाई को संभालने की ताकत नहीं आएगी, अच्छाई को संभालने की ताकत नहीं आएगी, इसलिए दो चार दिन में अगर हमारी अमृत वेला बहुत अच्छी होती है तो किसी को सुनाने के बेहतर रह नहीं सकते, तुरंत सुना देते हैं अमृत वेला बहुत बढ़िया चल रही है, खत्म हो गए तीसरे दिन से अमृत वेला। देखो आप सभी का अनुभव होगा, आपने अगर किसी को सुना है कि मेरा योग बहुत अच्छा हो गया तो दूसरे दिन से योग खत्म हो जाता है, मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई दूसरे दिन से स्थिति खत्म हो जाती है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि मेरी उसमें सूक्ष्म अहंकार है, जो मेरी कहते हैं उसमें सूक्ष्म अहंकार है, इसलिए बाबा मुझसे बहुत बढ़िया अमृत वेला करा रहा है कर रहा है फिर अहंकार नहीं है। इसलिए गोदावरी में आपने सुना होगा ना लास्ट क्लास में, रात को सोने के समय बाबा को अच्छा भी देना है और जो उनसे बुरा भी हुआ वो भी देना है। हम बहुत बार बुरा दे देते हैं और अच्छा अपने पास रखते हैं, फिर अच्छा ही काम कर रहा है क्योंकि अच्छा ही संभालने की ताकत नहीं है। अगर सब कुछ उसको दे देते हैं तो हम अपने आप खाली हो जाते हैं, पूरा बेगर पूरा जीरो। इसलिए क्लास में आपने सुना होगा कि अनंत को पाने के लिए शून्य बनना पड़ता है, क्योंकि अनंत की शुरुआत शून्य से होती है, अनंत की शुरुआत शून्य से होती है, इसलिए शून्य में आ जाओ अनंत अपने आप मिल जाएगा। आप जब शून्य बन जाओगे, शून्य, शून्य कितने भी लगाओ उसकी वैल्यू शून्य होती है। अगर आप शून्य बन जाते हैं तो फिर बाबा उसके ऊपर बहुत सारे शून्य लगाते हैं, और शून्य लगाते लगाते आपके आगे एक कम लग जाता है आपको पता नहीं चलता। अगर अगर एक लग गया आपकी वैल्यू क्या होगी, कितनी बड़ी होगी, शून्य के आगे अगर एक लग गया एक नंबर उसकी वैल्यू क्या होगी, अब सोच कितनी बड़ी। इसलिए जब शून्य बनाते हैं हमारे आगे बाबा आ जाता है, एक लग जाता है। अपने आप को शून्य बनाओ, बाबा को पाना है पूरा तो शून्य बन जाओ, बिंदी बन जाओ, अपने आप सब कुछ मिल जाए। इसलिए मैं अच्छा रखना है ना बुरा रखना है, सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं। आज छोटी सी बात बोले, बहुत बार हम सभी ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं कि हम विश्व कल्याण करने वाले, जब हम कहते हैं तो कभी नहीं होता। बाबा विश्व कल्याण कराने वाला है, सभी परिवार को इकट्ठा लेके, सारे परिवार के, विश्व के परिवार के, विश्व एक के परिवार एक, उस सारे परिवार को इकट्ठा करा के सभी आत्माओं को निमित्त का भी निमित्त बना के, निमित्त भाव में भी कभी कभी अहंकार होता है, निमित्त के भी निमित्त बन जाओ, निमित्त का भी निमित्त बना के विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करने वाला है। इसलिए बहुत निर्अहंकार, जीरो, पूरा शून्य। इसलिए आपने वो कहानी भी सुनी है ना, जब कोई डिब्बा भरा हुआ होता है तो आवाज नहीं आती, अगर उसमें दो चार दाने हैं बहुत आवाज आती है, हमेशा भरे हुए रहे, जहां से आवाज नहीं निकलती वहां से बहुत कुछ होता है, और जहां से आवाज निकलती है वह बहुत कुछ खोलता है, खुद का भी और दूसरों का भी। इसलिए अपने आप को अपने आप में लाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो अपने आप। आज हर इंसान जो स्टार्ट में बात की थी वही कर रहे हैं, हर इंसान अलग अलग बातों के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और हम सब ब्राह्मण पद के पीछे भाग रहे हैं, सतयुग में ये पद चाहिए। हाँ बाबा ने कहा है गोद रखना अच्छी बात है, लेकिन अटैच नहीं होना, अगर वो पूरा नहीं होता तो हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। अब प्लान बनाइए, अवश्य बनाइए कि मुझे इस प्रकार पुरुषार्थ करना है, इतनी बारी मुरली पढ़नी है, इतनी बारी ट्रैफिक कंट्रोल करना है, इतनी बारी ये करना है, सेवा करनी, प्लान बनाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरा नहीं होता तो दुखी नहीं होना, अगर आप दुखी हो रहे तो प्लान ने क्या दिया, अच्छे प्लान ने अच्छा ये भी दुख दिया, उस अच्छे प्लान का कोई फायदा नहीं। आखिर होगा वही जो ड्रामा में नोट है, ना हम बदल सकते ना आप ना बाबा, कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमें बस प्लान बनाना है, लेकिन उससे अटैच नहीं होना, जब अटैच होते तो दुख मिलता है। प्रदर्शनी लगाई और हमने अगर पहले ही फिगर डाल दी तो प्रोग्राम रखा और कहा कि अच्छे प्रोग्राम में 5,000 आएंगे और 500 भी नहीं आए तो क्या होता है, दुख मिलता है। इसलिए जितने भी आए ग्रामानुसार बाबा आने वाला है, जिनका कल्याण होना है होने वाला है, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि कल्याण करने वाला वो है, मेरा भी कल्याण करने वाला वो है, और सभी विश्व की आत्माओं का भी वही है। तो पूरे निरअहंकार, कुछ भी आपका नहीं, जीरो, अब जीरो, जीरो बनने में बहुत मजा है, कभी बन के देखो, सुख पूरा मिल जाएगा, जीरो बन जाओ बस। एक दिन सोचो कभी बैठ कर कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बाबा चौधरी कुछ भी नहीं, मेरा न मेरा शरीर है कुछ नहीं, शरीर परिवार घर कुछ नहीं मेरा, मैं पूरा बेघर हूं। एक दिन सोचो बस, अनुभूति देखो आपकी क्या होगी, सोचो। जब तक आपके पास कुछ ना कुछ है तब तक आपके पास दुख है, जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा उस दिन आपके पास सुख होगा, वो भी परमात्मा सुख होगा, साधारण सुख नहीं, बाबा का सुख। आज भी आपका कुछ छीन के कोई लेके चला जाता है फिर भी सुखी, कल भी आपको कोई आके कुछ देता है फिर भी सुखी, समानता की अवस्था, पूरी समान हो या ना हो मैं सुखी हूं। जब आप मैं में आ जाएंगे, इस मैं के चक्कर में ही सारा ड्रामा चल रहा है, मैं के चक्कर में, इसे आप अपने आप में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आत्मिक स्थिति सारी उपलब्धियां करा देती है। तो आत्मिक स्थिति में आना हमारा परम कर्तव्य है, और जो आत्मा आत्मिक स्थिति में आने के लिए बहुत पुरुषार्थ करती है, मेहनत करती है, प्रयास करती है, वही आत्मा हम कह सकते हैं किसी को भूल लगे तो माफ कीजिए, पहले ही बोलते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, जो आत्मा आत्मिक स्थिति में आने के लिए पूरा प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है, मेहनत करती है, वही बाबा की सपूत बच्चे है। सपूत कोई आत्मिक स्थिति छोड़ के आप कुछ भी करो, बाबा उस समय के लिए आपको वाहवा करेगा, आपने किया, लेकिन उस वाहवा में वो वाहवा ही होगी जो बाबा के दिल से निकली वाली वाहवा है, अगर आत्मिक स्थिति में करेंगे तो। इसलिए जितना हो सके आत्मिक स्थिति, सेवा थोड़ी भी कीजिए आत्मिक स्थिति, धारणा थोड़ी कीजिए आत्मिक स्थिति, योग थोड़ा कीजिए आत्मिक स्थिति, ज्ञान थोड़ा सुनिए आत्मिक स्थिति, हर बात में आप कीजिए, तो जीवन में इतना रस मिलेगा कि ऐसे लगेगा कि ये जीवन समाप्त ही ना हो, ऐसा लगेगा कि संभव युग ऐसे ही चलता है। हम ऐसे ही कहते ऊपर ऊपर से कि बाबा मिला है तो संभव युग चलता ही रहे, सत्य ना आए, लेकिन अंदर से आए किसी की आश है कब हो जाए, खत्म हो पाए सब कुछ, बहुत जिंदगी चल रही, परिवार की चल रही, पुरुषार्थ की चल रही है। अगर किसी दिन बाबा ने बोला, किसी दिन आप सभी को बाबा ने बोला कि आज से अमृत वेला मत करो, मुरली मत करो, पब्लिक कंट्रोल मत करो, सेवा मत करो, हमें तो लग रहा है कि उस दिन आप सभी पार्टी करेंगे, लगेगा कि छूट गए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी बातों को झिझट समझ रहे हैं, अमृत वेला है, मुरली सुनना है, ट्रैफिक कंट्रोल है, सेवा है, धारणा है, झिझट समझ रहे हैं, कब छूटेंगे हमारे से, वो परेशान हो गए, हर आत्मा परेशान हो गई, अभी बहुत से आत्माएं अभी कहती है, बहुत से आत्माओं का सुनने में आता है, तो इतने साल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, न हमारे संस्कार बदल रहे हैं, न हमारे में उन्नति हो रही है, अभी हम फंस गए, अभी हम कुछ नहीं करना चाहते, बहुत से आत्माएं बोलती अंदर कर रही है, बाबा की श्रीमत नहीं तोड़ने के लिए कर रही, लेकिन उस लगन से नहीं कर रही जिससे करना चाहिए, क्यों हो रही है आत्मिक स्थिति में, जिससे हर बात बोझ लग रही है, बहुत बोझ लग रही है, आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे हर बात आनंद देगी, हर बात आनंद देगी, इसलिए पूरा आत्मिक स्थिति। और बस थोड़ा सा हम जानेंगे योग बल और भोग बल कैसे चुप्त होते हैं, लास्ट टाइम हमने जानी थी ये बात, कार्मिक अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं लास्ट क्लास में, ओके अच्छी बात है, चलो हमने अभी तक सुना है कि त्रेसस्व जन्मों के बंधन यहाँ है, हमारे अंदर है, वो कैसे है, योग बल और भोग बल क्या चीज है, देखिए आप त्रेसस्व जन्मों में जिन जिन आत्माओं के साथ पाठ बजाते हैं उनके साथ आपका एक सूक्ष्म धारा जुड़ा हुआ है, दुनिया में आप हर चीज से कनेक्टेड हो, हर चीज से, आज हम यहाँ बैठे हैं ना सभी, ये जो सोफा है उससे हम कनेक्टेड है सभी, जो भी फोन है, माइक है, जो भी दीवारें हैं, सबसे हम कनेक्टेड हैं, हम कनेक्ट होना मतलब हमारी ऊर्जा कनेक्ट है, जहां तक आपका ऑरा पहुंचता है वहां तक आप हर चीज से कनेक्ट हो, और तो और जिन जिन आत्माओं के साथ आपने जन्म लिए उनके साथ भी आप कनेक्ट हो उस जन्म में, लेकिन वो सारे धागे अभी तक यहां बंधे हुए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा उस छोटी सी कॉमेंट्री में, हम आत्मा से जब किसी की पहचान होती है हमारी तो हमारा धागा उससे जुट जाता है, आत्मा से धागा निकलता है, सूक्ष्म धागा, जिसको आप देखेंगे एस्ट्रल ट्रैवल में कहते हैं, या फिर जो सात चक्र है उनमें भी कहते हैं कि नाभि से एक कॉर्ड निकलते हैं, उस प्रकार आत्मा से निकलते हैं, पर आत्मा से कनेक्ट जिसके साथ भी आपके संबंध है उससे कनेक्ट करें, तो जब आप ये सारे धागे सत्य को और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में जैसे आप उतरते हो, जैसे किसी माता के गर्भ में अपने रामानुसार जो पार्ट मिला है उस माता के गर्भ में प्रवेश किया, आपसे एक सूक्ष्म धागा निकला, उस माता के मतलब उस आत्मा से कनेक्ट हो गया, जैसे गर्भ से बाहर आ गए क्योंकि लेन देन शुरू होती है ना, गर्भ में आ गए तो माता आपको वहां मतलब आपकी रक्षा कर रही है, आपको बढ़ा रही, गर्भ बढ़ा रही, आपका पालन पोषण जो भी है कर रही है अंदर, उसके कारण आपके ऊपर उनके कर्ज चल रहे हैं, शुरुआत वहां से होती है। जैसे आप गर्भ से बाहर आ गए तो दूसरा लहरा आपके पिता से जुड़ गया, तीसरा लहरा आपके जो भी रिश्तेदार है, भाई है, जिससे आपकी पहचान होती जाती है, उससे एक एक धारा कनेक्ट होना चाहते आत्मा से, और आपको उनकी याद तब तक रहती है और आपका कनेक्शन उनसे तब तक रहता है जब तक उस धागे से जो लेन देन होंगे वो पूरी नहीं होगी। अगर एक बार लेन देन पूरी होगी वो धागा पड़ते जाता है, कैसे होता है जैसे इतने सारे धागे जुड़ गए आपके, वो एक जन्म के, उस जन्म में आप जिस गांव में जन्म लिया उन सभी गांव के लोगों से प्रकृति के साथ आपने जो जो कर्म किए उस समय, किसी पेड़ को काटा है पेड़ से, किसी किस कॉन्शियसनेस ने काटा है उस पेड़ से धागे जुड़े, किसी चीज को यूज किया है, किसी जानवर को मारा है, तो ये सारे पेड़ पौधे जानवर प्रकृति में आते हैं, पांच तत्वों में आते हैं, उन पांच तत्वों से आपके धागे जुड़ गए, अकाउंट शुरू हो गए। तो आप अगले जन्म में आते हैं, उनका रिटर्न वहां नहीं किया, माँ ने आपको जितना दिया, आपकी माता ने जितना दिया गर्भ में आने से लेकर उसके अंत तक, उसने आपको जितना भी दिया, खाना पीना जो भी दिया, आपकी रक्षा की, उसका अगर आपने उस जन्म में रिटर्न नहीं किया तो धागा बंधा ही रहेगा, आप अगले जन्म में चले गए तो माता अगले जन्म में चले वो आपने। तो ऐसे सोचिए 63 जन्मों में कितने सारे आत्माओं के साथ हमारे धागे बंधे हुए, अब सोचिए दुनिया के जितने भी पार्ट थे बड़े बड़े, सारे पार्ट नहीं बजाए हैं दुनिया के बड़े बड़े पार्ट, तो कितने आत्माओं के साथ हमारे कनेक्शन है, जिससे पहचान होगी धागा जुट गए। आज भी आप रास्ते से गुजरते हैं, कहा किस रास्ते से जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किस घर में जाते हैं, आपकी उस आत्मा से ही बात होगी, उस आत्मा से ही लेन देन होगी, उस आत्मा की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी जिनके साथ आपका धागा जुड़ा होगा, दूसरी आत्मा की ओर आपकी दृष्टि कर्म बोध संकल्प नहीं जा सकती, जिनके साथ जुड़ा हुआ है उन्हीं के साथ जाएंगे। तो कहना यही है इतने सारे कर्मों के धागे अंदर बंधे हुए, तो सोचे 63 जन्मों में कितने आत्माओं के साथ हमने जन्म लिए, कितने पार बजाए हैं, तो प्रकृति के साथ आत्माओं के साथ हमारे सारे धागे यहाँ बने हुए हैं। इसलिए बाबा बोले थे कहते ना कि सूत ऐसे मुझा हुआ है कि मैंने सिवाय कोई सुलझा नहीं सकता, कौन सा सूत कर्मों का अंदर मुझा हुआ है, एक दूसरे में अटका हुआ है, बाबा के सिवाय कोई निकाल नहीं सकता, मतलब बाबा जब ज्ञान देगा तो राजयोग से सारा सूत निकल जाएगा, ये मुझा हुआ। तो जैसे आप जन्म लेते हैं अकाउंट बनते, किसी के साथ अच्छा किया तो अगले जन्म में उससे अगले किसी न किसी जन्म में आपको रिटर्न में अच्छा देगा, किसी के साथ बुरा किया तो बुरा देगा। इसलिए यहाँ अभी किस जन्म में आपके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा है और आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, आपने जो दिया था वो आपको लौटा गया, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए बहुत बार माताओं को और भाइयों को भी दुख लगेंगे, बहुत बार हम बच्चों के लिए कहते हैं कि बचपन से मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, बच्चों ने कहा था कि मेरे लिए ये करो, हमने किया जो मेरे प्रेस्पिक रिगार्ड है अपना कर्म करते हैं, लेकिन हम तभी कर पाते हैं सिर्फ उनके साथ हमारे खाते, क्योंकि वो आत्मा है, किसी को दुख लगाओ तो माफी से, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, हम उनके लिए देखो। इसलिए बहुत कभी कभी होता है ना, हमारे अगर दो बच्चे हैं तो कभी कभी एक बच्चा कहता है तुम उससे ज्यादा प्यार करते, मुझे प्यार कम करते, कहते बच्चे खाता वैसा है, जैसा खाता होगा वैसे बच्चों से बिहेव करेंगे, परिवार से बिहेव करेंगे। तो कहना यही है हर कोई खाते के रूप में कर्म बदल चुप करने के रूप में हमारे जीवन में आता है, آپ کی نظر اسی گھر پر جائے گی جس گھر کی آتماؤں کے ساتھ آپ کے مطلب آپ کہاں بھی جائیں گے, آپ گھومنے پھرنے بھی جائیں گے, آپ اسی ستھان پر جائیں گے جس ستھان کے آپ کے کنیکشن ہے, پھر وہ کشمیر ہو, امریکہ ہو, لندن ہو, یا پھر جہاں بھی ہو, پناہ ہو, بمبے ہو, آپ وہاں ہی جائیں گے, اس ستھان کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ ہیں, اس لیے آپ کی جیون پوری کھاتوں سے بندی ہوئی ہے اور کھاتے چپو کرانے نہیں چل سکتے, یہ سارے کھاتے ہیں. ابھی نکلیں گے کیسے؟ جب ہم بابا کو یاد کرتے ہیں, ابھی دیکھیں گے بھوگ بل اور یوگ, اس لیے اتنے سارے کھاتے یہاں جڑے ہوئے ہیں. تو بھوگ بل کیا چیز ہے؟ لاسٹ جنم میں اگر کسی سے آپ نے 2000 روپے لیے, لاسٹ جنم میں کسی سے آپ نے 2000 روپے لیے, اس کو ریٹرن نہیں کی اسی جنم میں, اس نے بھی شریر چھوڑا, آپ نے بھی شریر چھوڑا, وہ کسی اور جنم میں چلے گی, آپ کسی اور جنم میں چلے گی, آپ بھارت میں ہیں, وہ چلو امریکہ میں, لیکن 2000 دینے کو باقی ہیں, ابھی دیں گے کیسے؟ ان کا اور آپ کا کھاتا دھاگے کے روپ میں جڑا ہوا ہے, بندھا ہوا ہے, اس لیے ابھی دیں گے کیسے؟ لینا تو پڑے گا. جب تک اس آتما کو آپ 2000 روپے ریٹرن نہیں کرتے, بھوگ بل کیا چیز ہے دیکھیے, جب تک آپ 2000 روپے ریٹرن نہیں کرتے تب تک اس آتما کے جیون میں جو جو دکھد گھٹنائیں ہو رہی ہیں, ان کے اندر جو دکھ چل رہا ہے, اس کے وائبریشن دھاگے سے آپ کی اور بہتے اور آپ کے جیون کو اوپر نیچے کرتے. تو جب تک آپ کو 2000 روپے کا دکھ نہیں ملتا تب تک وہ دھاگا کٹے گا نہیں, 2000 روپے کا. جب جس دن 2000 روپے کا بک پورا ہو گیا دھاگا اسی دن کٹ جائے. اس لیے آج کیا ہو رہا ہے, یوگا اگر آپ ٹھیک سے نہیں کر پاتے تو دکھ بہت بڑھ جاتا ہے, کیونکہ آ رہا ہے دکھ کنٹینیوسلی سبھی دھاگوں سے ہماری اور دکھ آ رہا ہے, پھر وہ شاریرک مانسک آرتھک پاریوارک سماجک ہر روپ میں ہمارے جیون میں. اس لیے جب ہم یوگ کرتے تو ہوتا کیا ہے, جیسے ہم بابا کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو دھارا تو جڑا ہوا, تو جیسے جو ایک منٹ میں بابا کو آتما سمجھ کے یاد کرنے کے بعد آپ کے پاس 1,00,000 روپے کی انرجی آ جائے, انرجی پیسے بھی ایک انرجی, دھن انرجی ہے, گھر انرجی ہے, آپ کی گاڑی انرجی ہے, پریوار انرجی ہے, ہر بات آپ کا ستھان انرجی ہے, کپڑے انرجی ہے, بھوجن انرجی ہے, دنیا میں ہر بات انرجی سے ملتی ہے, اور انرجی ارجا ہے. جیسے بابا کو یاد کیا تو اگر ہم ایسے سمجھ لیتے کہ 1 منٹ میں 1,00,000 روپے کی انرجی ہمارے اندر آتی ہے, تو 1,00,000 روپے میں سے میں نے کہ ان کے دینے ہیں 2000, ہم سمجھ لیتے ایک جنم کے بعد وہ 2000 کے 50,000 روپے سوکھ سمے, تو 1,00,000 روپے میں سے 50,000 اس دھاگے سے, 50,000 روپے کی انرجی اس دھاگے سے ان کے جیون میں بہتی چل جائے, اور اس آتما کے جیون میں کیا ہوگا, اچانک سے وہ جا کر ابھی جاب کر لے, بزنس کر لے, 50,000 روپے کا پروفٹ ہوگا, آپ کا کھاتا چپ ہو گیا, دھاگا ٹوٹ گیا. اس لیے اتنے سمے سے, لمبے سمے سے یوگ کرنے کے باوجود بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری آدمی انتی تو ہو رہی ہے, آدھیاتمک انتی ہو رہی, لیکن پاریوارک انتی نہیں ہو رہی, شاریرک انتی نہیں ہو رہی, مانسک انتی جو نگیٹو وچار اور ویرتھ سنکلپ ویرتھ وچاروں کا نہیں ہو رہے, کارن جتنا کما رہے سبھی ای ایم آئی میں چل جا رہا ہے, ہفتوں میں بڑھ رہا ہے, بیلنس زیرو, قرضہ اتنا اٹھا رہا ہے کریسس کے جنموں میں, جتنا کمائیں گے اتنا سارا ہفتوں میں جائے گا, بیلنس کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس, زیرو. اس لیے جب تک آپ کا بیلنس زیرو مطلب بڑھتا نہیں جاتا تب تک آپ کو یوگ لگانا ہے انت تک. اس لیے بابا اس کو کہتا ہے انت تک یوگ کرنا ہے, انت تک. جس دن یوگ کرنا بند ہو جائے گا اس دن آپ دکھ میں آ جائیں. اس لیے یوگ کرنا, کیونکہ آپ کے ہی کھاتے ہیں, ہفتے والے تو آنے ہی والے, ہفتہ لے وہ چھوڑے کے بھی ان کو تو دینا ہی آپ کو, کیونکہ آپ نے 10 روپے کسی کو چھوڑے نہیں تو وہ کیوں چھوڑیں گے. آج بھی اب دیکھیے بس سے ہم ٹریول کرتے ہیں, کنڈکٹر کے پاس اگر 1 روپیہ بچ جاتا ہے اترنے تک اس کو بولتے ہیں 1 روپیہ رہا ہے, کبھی کبھی بہت اچھا من ہوتا ہے جھگڑا بھی کر لیتے ہیں اچھے من سے 1 روپے کے لیے, اگر 1 روپے کے لیے اتنا ہنگامہ ہوتا ہے ان کے تو کتنے سال ہیں, کسی کو مارا ہے, پیٹا ہے, کاٹا ہے, کسی کا دھرم اتار ہے, کیا 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 ہے. اگر دکھائیں گے ڈرامہ ہے کوئی بات نہیں, دکھائیں گے تو ہمیں کیا لگے گا. اس لیے ہمیں انت تک بابا کو یاد کرنا ہے. بابا ہی ایک ایسی وستو ہے, وستو کہنا اچھی بات نہیں, کہ بابا ہی ایک ایسی بات ہے جس سے ہم پریورتن ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں سارے دن پر چیک کرنا ہے کہ اپنے آپ کو یاد کر کے کھاتے چپ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو یاد کرنا منا بابا کو, یا باڈی کو یاد کر کے کھاتے بٹھا رہے ہیں. چیک سارے دن تو جتنا ہم اسے یاد کیا, چھوٹے سے کلاس میں ہم سار کیا لے لیں گے, پورا سار ہمارے جیون کا ہر کرم آج اسے ہم آتما سمجھ کے کریں گے. ہر کرم کی آدھی آدمی استھتی میں ہوں گی اور انت بھی آدمی استھتی میں ہوگا. پھر دیکھیے مرلی سنیں گے وہ بھی آتما, ہر کرم کھانے پینے سے لے کر ہر کرم میں آتما کروں گا. پھر دیکھیے پریوار کتنا سکھی ہوگا, نہ صرف لوکک بلکہ الوکک پریوار بھی بہت سکھی ہوگا. مطلب ایک الگ ماحول تیار ہوگا, وائبریشن تیار ہوں گے. دیدی جی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, مرلی شروع کرنے سے پہلے بس ایک بار یاد دلا دیجیے کہ آپ سن رہے ہو, بار بار اگر ہو سکے تو بیچ بیچ میں یاد دلا دیجیے آپ سن رہے ہو مرلی, آپ سن رہے ہو مرلی, میرا اٹینشن جائے گا بیچ بیچ میں کہ میں آتما مرلی سن رہی ہوں. ایک ایک ماں باپ کے اندر جاتے جاتے پورا سار بیٹھ جائے گا اندر. دیکھیے آتماؤں کی استھتی بہت بڑھیا ہے. جب بھی مرلی سے پہلے یا مرلی کے بعد یوگ کرنا ہے تو یاد دلا دیجیے کہ آپ یوگ کرو, آتما آدمی استھتی میں آ جاؤ اور بندی سمجھ کے یوگ کرو جتنا بھی ہو سکے. تو اس پرکار سے ہم سارے کرم کو ہم کریں گے تو جیون کا بہت مزہ ملے گا, بہت مزہ ملے گا. پھر کچھ بھی ہو جائے ایکسٹرنلی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں, مطلب ہلچل میں نہیں آئیں گے, اندر زمان اچل بن جائے. اگر ہلچل میں آ رہے ہو تو آپ باڈی کانشیسنیس میں, اچل میں ہوں تو سول کانشیسنیس میں, سول کانشیسنیس میں پورے اچل رہیں گے اور باڈی کانشیسنیس میں پورے ہلچل رہیں گے. تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اپنی استھتی میں, جس کاریہ کو اپنی استھتی میں ہاتھ لگائیں گے کاریہ پورا ہو جائے, محنت کرنے کی آوشیکتا نہیں, اپنے آپ پورا ہو جائے اور سفلتا ملے گی, خوش ہوتے جائے. نرنے ساری شکتیاں سارے گن آپ کے پاس امرج رہیں گے. آج کی کلاس کا ڈسکشن کا چھوٹا سا سار کہ ہر کرم میں آتما, پھر میں آتما آنے کے بعد میں آتما ہر کرم کا آنند لوں. پھر دیکھیے جیون کیا ہو گیا, بس تین مہینے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں کہ میں کہاں تک آگے بڑھی ہوں, سوچنا نہیں, بس کرتے جانا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, آم کی مٹی اگر لگاتے زمین میں دوسرے دن نکال کے دیکھیں گے آگے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے, پھر لگائیں گے پھر دوسرے دن نکالیں گے کہ آیا ہے کہ نہیں آیا. اس کو کچھ گرمی چاہیے, اس کو اندھیرا چاہیے, پانی چاہیے, کچھ دنوں کے بعد وہ آ جائے گا پانی, بہت بڑا پیڑ بن جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تین مہینے کا سمے چاہیے, تین مہینہ سوچے نہیں کہ میں کہاں تک پہنچوں, میری استھتی کیا بنی, بس کرتے چلے تین مہینے کرتے چلے اور تین مہینے کے بعد چیک کیجیے, چاہے وہ آج کی تاریخ یا کل کی تاریخ لکھ کے لے لیجیے اور تین مہینے کے بعد چیک کیجیے میں کہاں تک پہنچوں تین مہینے کے بعد, اور چیک کر کیجیے کہ تین مہینے کے بعد پریوار میں کیا بدلاؤ ہوگا, میری استھتی میں شاریرک مانسک آرتھک پاروارک سماجک کیا بدلاؤ ہوگا, ہمارے سینٹر میں کیا بدلاؤ ہوگا. تین مہینے کے بعد چیک کیجیے, کیونکہ اتنی پاور فل آتما یہاں بیٹھے اور بدلاؤ نہ ہو ایسے ہو نہیں سکتے. بس تین مہینے کرتے چلیے, اب بڑے ہو وہ نہیں نکالیں گے اٹھلی, ہمیں پتا ہے روز چیک نہیں کریں گے, بس کرتے جائیں گے اور تین مہینے کے بعد پھل آپ کے سامنے ہوگا, آپ بہت الگ ہوگی تین مہینے کے بعد. بس کر کے دیکھیں پوری جیون بدل جائیں گے, سارے سدھیاں جیسے کہ آپ کے پاس اپنی سدھیا آج لوگ سدھیوں کے پیچھے بھاگ اپنی استھتی میں ساری سدھیاں, تو جتنا ہو سکے کرتے جائیں اور اپنے جیون کو بہت خوشحال بنائیں, سدا خوش رہے. بابا بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچے میرے ہیں اور میرے بچے ان کا اگر خوش نہ رہے تو اچھا نہیں ہوتا. بابا نے ابھی کہا نا لیا ریسنٹلی کہ جہاں خوشی ہے وہاں سا سب کچھ ہے اور خوشی نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر آپ کے پاس کچھ بھی ہو خوشی نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جو چیز جو بات آپ کو دل سے کر رہی ہیں کرتے جائیں, اپنے آپ کو مکت کیجیے, اپنی خوشی میں رہیے اور ہر بات کرتے جائیں. پھر دیکھیے جیون کیا ہوتا ہے, آنند اٹھائیں. بہت اچھا لگا اب سب سے دوبارہ مل کے, ایسے ملتے رہیں گے. بابا سبھی آتماؤں کو اڑاتا رہے گا, آگے بڑھاتا رہے گا, ایک دوسرے کو نمت بنا کے اور برہما باپ سمان مہا سمان جلدی ہی بن جائیں گے. رادیو سنا بس خوش رہیے. ہمارا ایک چھوٹا سا شبھ سنکلپ ہے آپ سبھی آتماؤں کے پرتی, بس آپ کا جیون آج سے سدا خوشحال رہے, جیون کی ہر اپلبدھی آپ کو پراپت ہو اور ایسے لگے کہ آپ کا جیون آپ نے جی لیا. سبھی کامنائیں شبھ کامنائیں آپ کی پوری ہو میں, یہ ہمارا آپ سب کے پرتی شبھ سنکلپ. سدا خوشحال رہیں, خوشی آپ کا جنم سدھ ادھیکار ہے, وہ آپ کے ہی ہے. اچھا, وہ شانتی.